हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे, लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामो रामो हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये देखकर कि यहाँ पर कितने उत्साह के साथ बड़ी संख्या में लोग हर रविवार को एकत्रित होते हैं भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए। ये एक पूना मंदिर की खासियत है कि जहाँ भी कार्यक्रम रखें पूरा कमरा भर जाता है, चाहे वो छोटा मंदिर के कमरे में पहले होता था आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ पर रहता था, और कॉन्फ्रेंस हॉल हो या ये हो। अब अगर इसका डबल कर दिया जाए तो लोग भी डबल हो जाएंगे, फिर और कर दिया जाए तो फिर स्वर्ग लोक से भी लोग आ जाएंगे। ये मानव जीवन की सफलता है। मानव जीवन की सफलता क्रिकेट मैच देखने में नहीं है, मानव जीवन की सफलता आविष्कार करने में, मशीन्स बनाने में नहीं है, लेकिन मानव जीवन की सफलता है कि जब व्यक्ति के अंदर भगवान की पवित्र कथाओं को सुनने के लिए रुचि जागृत हो, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने के लिए उत्सुकता जागृत हो गई है, समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भवसागर पार कर लिया है। क्योंकि भगवान की पवित्र कथाएं जब कान के छिद्र के द्वारा हृदय के आंगन में प्रवेश करते हैं तो हृदय की सारी धूल को साफ कर देते हैं, और जब हृदय की गंदगी दूर हो जाती है तो हमारा स्वाभाविक कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, कृष्ण प्रेम कोई बाहर से प्राप्त करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ उसको जागृत करना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कबू नए, श्रवणादि शुद्ध चित्त कुरिय उदय। कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, सिर्फ सुषुप्त अवस्था में है, अब उसको जागृत करना है। और जागृत करने की विधि है, जागृत करने की सरल विधि है भगवान की कथाओं को सुनना और उनके नाम का कीर्तन करना। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत उद्धार। इस कलयुग में युग धर्म है नाम संकीर्तन, और कोई श्रद्धापूर्वक नम्रता के साथ भीख मांगते हुए सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो उसको जरूर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है, कृष्ण पूरे जगत के स्वामी हैं, कृष्ण बहुत दुर्लभ है उनकी कृपा प्राप्त करना, लेकिन कलयुग में वही कृष्ण सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही आप पुकारते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे आप सच्चे दिल से भगवान के नाम को पुकारते हैं कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की दया है। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिना अनुराग। हे भगवान, आप इतने दयालु हो, आपके अनेक नाम हैं जैसे कृष्ण गोविंद हरि राम वनमाली मुकुंद मुरारी वासुदेव हरि, आपके अनंत नाम हैं और आपके अनंत नामों में आपकी अनंत शक्तियाँ हैं। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि जितनी शक्ति आप सूर्य में पाते हैं, जितनी शक्ति आप न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब में देखते हैं, वो सब शक्तियों से ज़्यादा कृष्ण के नाम में है। लेकिन वही कृष्ण नाम जो इतने शक्तिमान है वो इतने दयालु भी है कि पुकारते ही वो आ जाते हैं, पुकारते ही आ जाते हैं। इस दुनिया में अगर आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, आपको पार्लियामेंट के कोई सदस्य से मिलना है, देश के प्रधानमंत्री से मिलना है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको 1 महीने 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और फिर भी बहुत थोड़े समय के लिए मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठे बुलाओ US प्रेसिडेंट आ जाओ वो नहीं आएंगे, लेकिन आप कृष्ण कृष्ण पुकारो कृष्ण आ जाएंगे। हालांकि कृष्ण सब जगत के स्वामी हैं, कृष्ण इतने महान हैं, लेकिन वो इतने दयालु हैं कि जब कोई सच्चे दिल से पुकारते हैं उनको एक बार भी हरी हरी, जब वो हरी का नाम एक बार लेते हैं कृष्ण बोलते हैं कि मैं उस व्यक्ति का ऋणी हो जाता हूँ। जब द्रौपदी ने जब उसकी दुशासन उनके बेइज्जती करने का प्रयास कर रहा था, जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान बोलते हैं कि मैं उस पुकार से ऋणी हो गया, इसलिए मैं दौड़ते हुए आ गया। कृष्ण है, हमको पूरा विश्वास नहीं है कृष्ण पर, इसलिए हम दुखी हैं दुनिया में। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को दुख का कारण है, ये व्यक्ति मेरे सुख का कारण है, ये व्यक्ति अगर मेरे पे खुश हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, सब कृष्ण है, सब कृष्ण है, सब जगह कृष्ण है, सब व्यक्ति में कृष्ण है, सब समय कृष्ण है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह कृष्ण ही है। जब आप इस तरह से देखोगे तब आपका जीवन सुखी होगा। जब आप अलग अलग देखोगे कि यहाँ कृष्ण है, यहाँ कृष्ण नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये खराब व्यक्ति है, ये अच्छा मौसम है, ये खराब मौसम है, ये सब द्वंद्व बुद्धि है। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो द्वंद्वों से ऊपर उठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सब जगह मेरे स्वामी कृष्ण है। यतो नरसिंहो परतो नरसिंहो बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो यतो यतो यामित ततो नरसिंहो, सब जगह पर नरसिंह है, ये भगवान कृष्ण। तो भक्ति का मतलब है सब जगह कृष्ण को देखना, सब जगह अपने आराध्य देव को देखना, इस तरह सब समय सुखी रहना, सब समय देखना कि जो भी हो रहा है कृष्ण की कृपा है। अभी गर्मी है बहुत, यहाँ पहले बहुत गर्मी थी, कृष्ण की कृपा। थोड़ी बरसात हो गई, कृष्ण की कृपा। कूलर काम कर रहा है, कृष्ण की कृपा। थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा, कृष्ण की कृपा। कोई ओले पड़ जाए, कृष्ण की कृपा। भूकंप आ जाए, कृष्ण की कृपा। अभी हम लोग निगड़ी आश्रम में थे, वहाँ पर एक कुछ दिन पहले यहाँ पर बरसात हुई है ना, एक हफ्ते पहले, एक दस दिन पहले। तो आश्रम के जो बड़े ज़ोर से तूफान आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लोहे के इससे बनाए गए थे वो सब गिर गए, और आश्रम का भी छत गिरने के स्तर पे था, और सब वक्त नीचे बैठे देख रहे थे, त्राही माम कृष्णा कृष्णा। उस समय क्या बोलेंगे, आप कितना भी पावर लगाओ कुछ नहीं होगा। लेकिन भक्त पुकारने लगे, कृष्णा कृष्णा। इतना धीरे पुकारोगे तो नहीं होगा। जोर से पुकारिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम हरे हरे। भक्त कीर्तन करने लगे। भक्त को डर नहीं था, अगर गिर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं, मृत्यु हो जाए तो दूसरे स्थान पे जाएंगे, दूसरे इस्कॉन सेंटर में होंगे, या वो इस्कॉन सेंटर नहीं होगा तो दूसरा सेंटर खोल देंगे। लेकिन जहाँ भी जाएंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण प्रभु बस पार्टी लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं वो लोग भक्त हो जाते हैं। मैं कहीं गया था एक महाराष्ट्र के गांव में, बोले आपके एक भक्त आते हैं, और वो जहाँ जाते हैं लोग घर घर में जाके कृष्ण भक्ति देते हैं। तो भगवान की इच्छा हुई कि कोई दूसरी जगह पे प्रीचिंग करना है तो हमको वहाँ ले जाएंगे। तो भक्त को डरना नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, यही सुरक्षा है, यही सुरक्षा है। क्या सुरक्षा? कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण, कृष्ण का नाम ही सुरक्षा है, कृष्ण ही रक्षक हैं, कृष्ण ही पालक हैं। और ये जानकारी तब होती है जब हम हृदय को शुद्ध बनाते हैं। हृदय को शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है? नाम कीर्तन के द्वारा, चेतो दर्पणम आर्जनम। और कोई तरीका नहीं है हृदय को शुद्ध बनाने का। अपने हृदय को शुद्ध बनाने का एक ही तरीका है कि सिंसियरली, सच्चे दिल से भगवान के नाम को पुकारें। हम सब, आप में से अधिकांश लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, एक साल से, दो साल से, या 10-20-30 साल से, आप इसे अधिकांश लोग जप करते होंगे 16 माला, और करना चाहिए। लेकिन ये 16 माला भी ये शुरुआत है, 16 माला शुरुआत है। लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो उस दिन कब आएगा कि मैं ज़्यादा जप करूँगा, और ज़्यादा जप करूँगा, मैं हर समय जप करूँगा। कल मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, प्रभुपाद न्यूयॉर्क में एक डिवोटी झाड़ू लगा रहे थे मंदिर के बाहर, और झाड़ू लगाते बोल रहे थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम प्रभुपाद बोले दिस इज परफेक्शन ही इज डूइंग हिज सर्विस एंड ऑल्सो चैंटिंग ऑल द टाइम। ये परफेक्शन है। परफेक्शन ये नहीं है कि खाली सेवा कर दिए, परफेक्शन ये नहीं है कि खाली जप कर लिया, परफेक्शन ये है कि सेवा भी कर रहे और साथ में बोल रहे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमारी हम सेवा कर रहे होते हैं लेकिन मन में कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं आप लड़ो मेरी सेवा करो मेरी आज्ञा से, लेकिन साथ साथ मेरा नाम भी लो, नाम अनुस्मर युद्ध है, मेरे को स्मरण करो। कृष्ण को स्मरण कैसे करेंगे? नाम के द्वारा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो अगर आप इस दुनिया के चंगुल से मुक्त होना चाहते हैं तो हमेशा कृष्ण का नाम लीजिए। अगर आप एक क्षण भी कृष्ण को भूल जाते हैं और वही क्षण मृत्यु होती है तो आप फंस गए। फिर पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म यानी बहुत फिर से माँ के गर्भ में जाना, आपके लिए तकलीफ, माँ के लिए तकलीफ, फिर से सोच भी नहीं सकते। मैं किसी एक भक्त ने अरेंज किया था, मैं फ्लाइट से गया मायापुर अभी कुछ दिन पहले, और आप प्लेन में जाएंगे आप देखेंगे, आप में से लोग नहीं गए हो भाग्यशाली हैं, क्योंकि लगता है बहुत सुविधा होती है, सीट्स इतने छोटे, और स्पेशली टॉयलेट, वहाँ के टॉयलेट्स को देख के आपको माँ का गर्भ याद आ जाता है एकदम, एग्जैक्टली वही साइज का, उसे उसे थोड़ा बड़ा। तो मैं सोच रहा था कि ये तो इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है, लेकिन माँ का गर्भ में कैसी स्थिति होती होगी जब ऐसे बैठना होगा, घुटने से सिर से लगा के, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है, और कीड़े काट रहे हैं। ये काल्पनिक चीज़ें नहीं है, ये शास्त्रों में भी है और वैज्ञानिक भी देखते हैं, जो मशीन से देखते हैं बच्चा कैसे तड़फ रहा होता है। और ये किसी और की बात नहीं है, ये मेरी और आपकी बात है, हम सब स्थिति से गुजर चुके हैं। भगवान गीता में बोलते हैं अगर आप प्रगति करना चाहते हो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस पर ध्यान किया करो, सोचा करो कि जन्म में कितने कठिनाइयाँ हुई, कितना पेनफुल है। कई बार कोई व्यक्ति गलत स्थिति में जाता है या खराब स्थिति से गुजरता है, फिर बोलता है मैं ये कभी नहीं जाऊंगा इस जगह पे, बहुत खराब अनुभव हुआ। लेकिन हम लोग बार 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 पुनरपि जननम जठरी गमनम बार बार जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि माया इतनी चतुर है, माया हमको उल्लू बना रही है, मूर्ख बना रही है, हमको पता ही नहीं चलता। जैसे हम भक्ति करने लगते हैं माया देवी बोलती है नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं, बहुत हो गया अभी, हरे कृष्णा 16 माला हो गए ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य, अभी बहुत हो गया, 16 माला कर लिया, और मंदिर में एक बार गए बहुत हो गया। देखो कोई भी चीज़ ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता है, अगर ज़्यादा खा लिया तो बदहजमी हो जाती है, ज़्यादा पढ़ाई किया तो भी अच्छा नहीं होता, इसलिए सब कुछ मॉडरेट होना चाहिए। एक जन्म में गए या 10 जन्म में गए, भगवान के धाम जाना ही है। लेकिन ये बात सही है, आप अभी जाओ या 10 जन्म बाद जाओ, भगवान का धाम वही की है, लेकिन जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको बहुत दुख भुगतना पड़ेगा। मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ लेकिन ये बहुत दर्द की कहानी है, मैं हंसते हुए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक दवाई के रूप में, मीठी दवाई के, लेकिन आप सोचिए इस पर 9 महीने ही सोचिए, 9 दिन के लिए आप समझो किसी कारणवश आप बंद हो गए, टॉयलेट में किसी ने बाहर से बंद कर दिया 9 दिन के लिए, 9 दिन बहुत हो गया, 9 घंटे के लिए, यू नो कैसे कैसे कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में 9 महीने रहे, और जब जब और तकलीफ होती है तो बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से, हे कृष्णा मुझे निकालो, मुझे इस दुखमय स्थिति से निकालो, मैं आपका भक्त बनूंगा, मुझे निकालो, हे कृष्णा मुझे निकालो। ऐसे हम प्रार्थना, हम में से हर एक ने प्रार्थना की है श्रीमद् भागवत के अनुसार, मैं आपका भक्त बनूंगा, मेरे को ऐसी जगह पर जन्म दो जहाँ आपके भक्तों का संग हो, मुझे इंद्रलोक भी नहीं चाहिए, मुझे इंद्रलोक नहीं चाहिए अगर वहां पर भक्तों का संग नहीं है, वहां पर हरि कथा और हरि नाम नहीं है, वहां मैं नहीं जन्म लेना चाहता। हर एक व्यक्ति ने ऐसी प्रार्थना की थी, फिर भगवान की कृपा से हम बाहर निकलते हैं रोते हुए, और फिर सब बोलते हैं ओ कितना सुंदर है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बेचारा रो रहा है, सब बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, और फिर उसके बाद तो असंख्य तकलीफ शुरू हो जाती। तो इन पे मनन करो और सोचो क्यों आप फिर आना चाहते हो इस संसार में। ऐसा हो कि ऐसे बिजनेस में हम देखते हैं कि ये चीज़ करें तो 4 फायदे होंगे और 4 नुकसान होंगे, ऐसे जज कर सकते हैं कि ये अगर हमने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया तो ये फ़ायदा होगा और यहाँ किया तो ये फ़ायदा होगा, दोनों में से क्या करना है। ऐसे आप डिसाइड करो कि अगर हम भौतिक जगत में आए तो ये आनंद मिलेगा और भगवान के धाम गए तो ये आनंद मिलेगा। तो कोई तुलना है, कोई कंपेरिजन है? ये दुनिया है दुखालय दुखालय, और दुखालय होने के बाद भी अगर आप बोलते हो ठीक है दुखालय, कम से कम मैं अपने अपार्टमेंट में रहूँगा, नहीं, गेट आउट सर, आपकी उम्र ख़त्म हुई, आपको निकलना होगा। इसलिए दृढ़ता के साथ कृष्ण का नाम लो, विश्वास के साथ कृष्ण का नाम लो, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आपको बहुत धनवान बनने की ज़रूरत है, ना आपको भक्तों की संगति में ज़्यादा कोई पोस्ट की ज़रूरत है, ना आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान यही चाहते हैं कि आप उनको पुकारो, और क्या पुकारने के लिए क्या लगता है, किसी को पुकारने क्या लगता है? जैसे कोई व्यक्ति आपको बोले आप खाली मेरे को कॉल करो बस, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, जैसे पुणे में कोई है नहीं शायद, नहीं कि आप कॉल करो, आप कॉल करने का भी खर्चा हो जाता है, लेकिन कृष्ण के तो कॉल करने, कृष्ण का पुकारो, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, हे राधे करुणामयी राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे गोपीनाथ राधा कुंज बिहारी राधा मदन मोहन, पुकारो ऐसे भगवान को। अगर आप पुकारोगे नहीं तो मदद कैसे होगी, भगवान कैसे आएंगे? लोग बोलते हैं मेरे को 10 साल हो गए भक्ति में करते करते, अनुभव नहीं हुआ कोई भगवान का, क्योंकि आपने भगवान को पुकारा ही नहीं सच्चे दिल से, आप भगवान को पुकार ही नहीं रहे। भगवान को अगर एक बार भी पुकारे होते भगवान आ जाते, हम पुकार ही नहीं रहे, हम सच्चे दिल से नहीं पुकार रहे, हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एक रिचुअल हो गया। जैसे कोई बैंक में गवर्नमेंट जॉब में लोग जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा आ जाते हैं, इससे एक रिचुअल है कि 16 माला पूरे हो गए। कृष्ण बोलते हैं कि भगवान राम बोलते हैं, कोई एक बार भी मेरे को पुकारता है और कहता है कि मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो मैं उसको नहीं त्यागता। जब भक्ति का सार ये है कि नाम कीर्तन, नाम जप। चलो प्रभुपाद बोलते हैं, वी शुड क्राई लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, जैसे छोटा बच्चा माँ के लिए पुकारता है, इसे प्रयास करना चाहिए। अगर रोना नहीं आता तो रो कि मेरे को रोना नहीं आ रहा। शुड क्राई फॉर कृष्णा, बेग कृष्णा, भिक्षा मांगो कृष्ण से, कृष्णा कृष्णा कब कृपा होगी, कृष्णा कब मेरे को दया होगी, राधा रानी आप कब दया करोगे, वैष्णव कब आप दया करोगे, करुणा करो वैष्णव ठाकुर, दया करो ओ बरो, करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना के हो नाई, कृपा करो वैष्णव ठाकुर, दया र सागर एदा से करुणा कोरी, दिया पद छाया शोदा ही अमार, मेरे पर दया करो। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे, ऐसे भगवान से, गुरु से, प्रभुपाद से प्रार्थना करो, फिर आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी। और कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन सिर्फ मांगने पे मिल सकती है बहुत दुर्लभ, क्योंकि लोग मांगते ही नहीं है, मांगते ही नहीं है। ऐसे नहीं कि सप्लाई कम है, ऐसे नहीं कि वो अभी खाली चार पीस है, अभी चार लोगों को दे दिया, फिर अगले युग में चार लोगों को देंगे, नहीं, कृष्ण आपको देना चाहते हैं। कृष्ण बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, जो मेरे प्रति जिस भावना से आता है मैं भी उसको वैसे ही समर्पण करता हूँ। अगर आप कृष्ण को 10% हृदय से पुकार रहे हो तो कृष्ण 10% रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अगर आज आप बोलते हैं कृष्ण मैं आपका हूँ, सर्वस्व तोमारा चरणे संपिया पुड़िया छे तोमारा घोरे, हे गोपीनाथ हे कृष्ण मैं आपके शरण में आ गया हूँ, तुम बिना कुगे आछे अमार, मेरा कोई नहीं है, हे राधा रानी हे कृष्ण आप पुकारो, तो कृष्ण मदद करेंगे। गोपीनाथ पटनायक को मदद किया था, गोपीनाथ पटनायक को चांगा पर फेंक रहे थे, ये छोटी सी गलती थी, उसने कुछ राजा के पैसे लिए थे और खर्च कर दिए थे, तो उनको चांगा पर फेंक रहे थे। एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होता है स्वर्ड्स का, तलवार गोल गोल घूम रहे होते हैं, ऊपर से व्यक्ति को फेंक दिया जाता है जिंदा, जिससे वो कट के नष्ट हो जाए। सब भक्त आकर बोले, महाप्रभु महाप्रभु देखो आपका भक्त का जीवन खतरे में है, आप मदद करो, गोपीनाथ खतरे में है। महाप्रभु बोले, क्या बात हुई, क्या कारण है? बोले, गोपीनाथ ने कुछ पैसे लिए थे राजा के, और राजा के जो टैक्स कलेक्ट किया था राजा को देने के बजाय आधा खुद खर्च कर दिया। तो महाप्रभु बोले, उसने खर्च कर दिया, उसकी गलती है, मैं क्या करूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं क्यों ये भौतिक चीज़ों में पढ़ूँ, पैसे के मामले में मेरा क्या लेना देना। फिर कुछ और भक्त आए, बोले, महाप्रभु मदद करो मदद करो, आपके भक्त खतरे में है। गोपीनाथ पटनायक यानी पांच पांडव में से एक, जो पांच पांडव है कृष्ण लीला में, वही चैतन्य लीला में गोपीनाथ पटनायक रामानंद राय वाणीनाथ राय के रूप में आए, आप मदद करो। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं सन्यासी हूं। इसने 2 लाख कहाना, कहाना यानी जैसे आज रुपये होता है वैसे समय कहाना करेंसी थी, 2 लाख कहाना राजा के खर्च कर दिए गलत तरीके से, तो मैं क्या करूं, मैं भिखारी हूं सन्यासी, मैं अपना कपड़ा आगे लेकर भीख मांग सकता हूं अगर कुछ थोड़ा सा पैसा हो, लेकिन 2 लाख, समझो कोई सन्यासी भीख मांगता है 2 लाख रुपए मुझे भोजन के लिए चाहिए, लेकिन ये कैसे, मैं भीख नहीं मांग सकता। अगर आपको मदद चाहिए जाओ भगवान जगन्नाथ को बोलो, वो मदद करेंगे। सब भक्त जगन्नाथ, वो जगन्नाथपुरी में ही लीला हो रही थी, जगन्नाथपुरी में सब भगवान जगन्नाथ मंदिर गए, प्रार्थना करने लगे। एक्चुअली हुआ ये था कि गोपीनाथ पटनायक पैसे वापस देने को तैयार थे, लेकिन उनके पास पैसे थे ही नहीं। उन्होंने राजा के पुत्र को बोला कि, राजा का पुत्र उनके घर में आया, बोला पैसे दो नहीं तो गिरफ्तार करेंगे। बोले, मैं दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घोड़े हैं उनको आप ले लो, मेरे पास 10 घोड़े हैं और उसकी कीमत जितनी भी हो वो आप कम कर दो और बाकी का बाद में इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। तो उसने 10 घोड़े दिखाए राजा के पुत्र को, और राजा के पुत्र, राजा प्रताप रुद्र के पुत्र जानबूझकर उन घोड़े की कीमत बहुत कम बता रहे थे, जितनी कीमत होती उससे कम। जैसे मान लो 2000 रुपये का है तो बोलते इसकी कीमत 200 रुपये। तो गोपीनाथ को बहुत गुस्सा है, बोला देखो तुम राजपुत्र हो लेकिन ये जान लो मेरे घोड़े साधारण नहीं हैं। ये राजपुत्र की एक आदत थी कि वो बात करते करते देखते देखते बीच बीच में पीछे मुड़ते थे, जैसे वो अगर बोल रहे हैं तो ऐसे देखते थे। तो गोपीनाथ ने टॉन्ट करते हुए मजाक करते हुए बोला कि मेरे घोड़े जो हैं सामने देखते हुए पीछे नहीं मुड़ते आपकी तरह। तो राजपुत्र को बहुत गुस्सा आ गया, उसने तुरंत राजा को जाकर झूठ मूठ बता दिया कि गोपीनाथ पैसे नहीं दे रहे, अगर आप आज्ञा दो तो मैं उनको अभी मृत्युदंड दे दूं, चांगा पर फेंक दूं। राजा प्रताप रुद्र गोपीनाथ से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा प्रताप रुद्र बोले ठीक है आपको जो ठीक लगे, किसी न किसी तरीके से मुझे पैसे चाहिए, आपको जो ठीक लगे। तो राजपुत्र ने आज्ञा दे दी कि इनको चांगा पर फेंक दिया जाए, फिर राजा ने नहीं कहा था। तो इधर उनको चांगा पर ले जा रहे थे, उनके हाथ बेड़ियों में से पुलिस लेके जाती है, ले जा रहे थे चांगा की ओर, बस कुछ ही क्षण दूर थे मृत्यु से। और उस समय राजा के एक ऑफिसर जिसका नाम था हरिचंदन, वो राजा के पास गए, बोले हे राजन आपके राज्य में अन्याय हो रहा है। गोपीनाथ ने अगर कुछ गलती भी की हो उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, उन्होंने इतने साल आपके राज्य में नौकरी की, अगर उसने थोड़ा सा पैसा खर्च भी कर लिया है तो उसको उसको समय देना चाहिए, वो पैसे दे देगा। अगर आप उसको चांगा पर फेंक कर मृत्यु दंड दे दोगे तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, कम से कम थोड़ा तो बाद में दे रहा है इंस्टॉलमेंट में। राजा गंभीर हुए, बोले मैंने कभी नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा अपने पुत्र से कि पैसे को वापस प्राप्त करना, जाओ उसको रोक दो। तुरंत हरिचंदन दौड़ते गए, बोले रुक जाओ रुक जाओ, राजा का आदेश हुआ है गोपीनाथ को मुक्त कर दिया जाए। तो गोपीनाथ को मुक्त कर दिया, सब भक्त दौड़ कर आए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास और बोले कि गोपीनाथ मुक्त हो गए आप आपकी प्रार्थना से। भगवान बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आप जगन्नाथ की कृपा से। ऑफकोर्स वही है जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक ही इंटर भगवान, सब तीनों भगवान के ही रूप है। फिर महाप्रभु ने पूछा कि गोपीनाथ को जब ले जा रहे थे मृत्यु के पास, चांगा पर फेंक रहे थे, उनके कुछ ही क्षणों में डेथ होने वाली थी मृत्यु, तो क्या कर रहे थे? भक्तों ने बताया गोपीनाथ पटनायक उनके पास माला नहीं थी लेकिन उंगली से गिनते हुए गा रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस वो गिन रहे थे एक हाथ से गिन रहे थे, फिर एक माला होने पर यहाँ पर निशान लगा रहे थे, उनको कोई डर नहीं था। ये है भगवान की मदद। और जब चैतन्य महाप्रभु को समाचार मिला वो खुश हो गए कि मेरे भक्त की रक्षा हो गई, लेकिन साथ साथ बोले राजा के सेक्रेटरी को काशी मिश्र को, अब मैं यहाँ जगन्नाथपुरी नहीं रहूँगा, मैं यहाँ पर जप करने के लिए भजन करने के लिए हूँ, हर थोड़े समय में कोई ना कोई व्यक्ति आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं अलालनाथ चला जाऊँगा। जब राजा को समाचार मिला राजा बोले नहीं नहीं उनको रोक दो, उनको किसी भी तरीके से रोक दो, उनसे कहो कि आज से गोपीनाथ पटनायक को बुलाओ, उसको बोलो उसका पूरा ऋण माफ, कोई घोड़े भी देने की जरूरत नहीं, 2 लाख कहाना देने की जरूरत नहीं, और उसको बोलो आज से उसको डबल सैलरी मिलेगी, तनख्वाह भी डबल और ये सिल्क की पगड़ी इनाम भी। ये भगवान की कृपा का फल है। उसका उसने क्या किया था, उसने पैसे गलत उपयोग किए थे और इनाम क्या सजा क्या मिली, डबल सैलरी और ऋण भी माफ, महाप्रभु कृपा से। तो ये एक छोटी कहानी है, और कई कहानी है। जब गजेंद्र हाथी खतरे में था उसने भगवान को पुकारा, अब भगवान आए। द्रौपदी खतरे में थी भगवान पुकारा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हम खतरे में हैं, है ना। हम कोई कहे प्रभु जी आप खतरे में हैं तो बोले क्या हो गया, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे सब कुछ ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, मेरा हार्ट अभी भी चल रहा है, देख रहा हूँ मैं चश्मे के साथ कम से कम देख रहा हूँ, मेरी इयरिंग ठीक है, मेरी बॉडी ठीक है, हमको पता नहीं है कि मृत्यु करीब आ रही है। भक्त को तैयार रहना चाहिए, और तैयारी क्या है, नाम स्मरण। हमारे इस्कॉन के एक बड़े लीडर शिला भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जो शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य हैं और GBC के सदस्य भी, अफ्रीका में प्रचार करते हैं, भगवान की दिव्य इच्छा से वो अपने आखिरी दिनों में हैं, वो अभी गीतानागरी में, पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में, और वहाँ पर अनेक अनुयायी और उनके गुरु भाई और भक्तों के साथ घिरे हुए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अब इनके कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अब उनकी वचनों को सुनोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे मृत्यु का सामना करना चाहिए। वो बिल्कुल निर्भय हैं, बिल्कुल निर्भय हैं। उन्होंने अपना आखिरी संदेश दिया है कि अपने शिष्यों को और अपने सब इस्कॉन के सब भक्तों को कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा ये शरीर भक्तों की और भगवान की सेवा में अर्पण हो जाए। वासुदेव दत्त जैसे प्रार्थना करते थे। वासुदेव दत्त से भगवान ने पूछा कि वासुदेव तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? वासुदेव बोले, भगवान मेरी इच्छा है कि सारे जीव, जितने भी ब्रह्मांड में सारे जीव हैं, सब आपके धाम वापस चले जाएं, सब के सब। और अगर आपको लगता है कि वो पापी हैं, उनके पाप का फल कहाँ जाएगा, मुझे दे दो उनका पाप, मुझे उनका पाप दे दो। श्रील भक्ति तीर्थ महाराज उसी मूड में है अभी, वासुदेव दत्त के मूड में। वो बता रहे हैं लोगों को कि सब जो भी मेरे से गलती हो आप माफ़ कर दो, और आपने कोई गलती हो तो मैं माफ़ कर दूँ। बिल्कुल कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं। भक्तों को सेमिनार्स दे रहे थे पहले फॉरगिवनेस पर, क्षमाशील, किसी भक्त को क्षमा करना चाहिए। अगर आपने मेरे प्रति अपराध भी किया है और अगर मैं वो अपराध माफ़ नहीं करता और बदले की भावना रखता हूँ, वो ऐसी है कि मैंने हाथ में जलते हुए कोयले रखे हैं कि कब आपके ऊपर फेंकूंगा, और जब तक आपके ऊपर नहीं फेंक रहा तब तक मेरे हाथ जल रहे हैं उस कोयले के कारण। वो क्षमाशीलता पर उपदेश कर रहे हैं और उनके मन में कोई डर नहीं है कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, बस मैंने प्रभुपाद की सेवा की, प्रभुपाद कृष्ण मुझे जहाँ ले जाएंगे। ऐसे भक्त की चेतना होनी चाहिए। और वो चेतना कैसे जागृत होती है? सतत कीर्तन से। कीर्तनीय सदा हरि, कृष्ण नाम कीर्तन सतत होना चाहिए, धीरे 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 बढ़ाते हुए कृष्ण नाम कीर्तन सतत होना चाहिए। और कृष्ण नाम सतत कीर्तन करने से चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय की जो जो भी दोष हैं, हृदय की जो भी गंदगी है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और फिर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। अगले महीने 8 तारीख को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। आज मैं थोड़ा सा जगन्नाथ की इस लीला के बारे में बोलना चाहूँगा। शुरू होते ही आधा घंटा बीत गया। मैं शॉर्ट में बताऊँगा कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते तो कैसे वो रथ यात्रा उत्सव में भाग लेते, वह स्वयं नृत्य करते उसमें और भक्तों भी उसमें भाग लेते थे। उसका मैं संक्षिप्त में वर्णन पढ़ूंगा। मैं श्री गुरु श्री प्रभुपाद और हमारे सारे आचार्यों की कृपा चाहता हूँ। आप सब वैष्णवों के चरणों में भी प्रणाम करते हुए मैं आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। आप सब जोर से बोलिए हरी हरी। हरी का नाम सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ी सेफ्टी अश्योरेंस है। इस दुनिया में हरी के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। न धन, न तपस्या, न यज्ञ, न ज्ञान, कुछ भी नहीं। आपको सारे श्लोक भी याद हो लेकिन हरी का नाम भूल गए तो क्या फ़ायदा? और अगर सारे श्लोक भूल जाएं लेकिन हरी याद रहे तो सब कुछ याद है। आपको क्लास में टेस्ट होता है ना, तो अगर आपको आंसर नहीं मालूम तो लिखो हरी, तो आप लिखो हरी हरी। तो अगर आप टीचर बुद्धिमान होगा तो फुल मार्क्स देगा वो, तो बुद्धिमान नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो उनको बुद्धि दे। हरी का नाम सुप्रीम है हमेशा। सबसे बड़े से बड़े खतरा आए आप हरी 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 से हरी हरी का नाम पुकारिए। बड़ी से बड़ी बीमारी भी एक्चुअली हरी का नाम ही दवाई है। बाकी सब डॉक्टर तो सिर्फ एक ड्रामा है, वो थोड़े समय वो भी करना होता है, लेकिन मन में जाना चाहिए कि हरी हरी, यही सब कुछ है ना। जब हम भक्त लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पे दया आती है कि ये मूर्ख जो है ये दूसरों को दवाई दे रहा है, इसको पता नहीं है कि इसकी मृत्यु आ रही है। ऑफकोर्स डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि डॉक्टर कितनी भी कोशिश करे मृत्यु आनी है। जब मृत्यु आनी है तो आएगी, डॉक्टर की भी आएगी। इसलिए असली दवाई सिर्फ हरी नाम है। तो हमेशा याद रखिए हरी का नाम, हमेशा अपनी जीवा पे हरी नाम को ऐसे फिक्स्ड कर दीजिए जैसे श्वास फिक्स्ड है, जैसे ब्रीदिंग जैसे होते हैं, जैसे नेचुरल ब्रीदिंग होती है। कभी कोई बोलता नहीं आपको, प्रभु जी श्वास लेना अभी, हाँ अभी श्वास लेना, अभी प्रोग्राम में जा रहे हो पूरा 1 घंटा श्वास लेना। कोई बोलता नहीं है, आपको स्वाभाविक हो गया। ऐसी आपकी आदत हो जानी चाहिए, इवन प्रवचन के बीच में आप हृदय में से हरी 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 जी भिलाते हो या जी भिलाना नहीं चाहते तो मन में ही हरी 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 कृष्ण 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 राम 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 गौर 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 निताय 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 गौर गौर गौर, हमेशा बोलते रहिए। और आप जो सेवा कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं साथ साथ, और ज़्यादा अच्छी सेवा होगी अगर आप गौरंग को याद करें। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले जब जगन्नाथपुरी में रहते, एक दिन सब भक्तों को बोले कि मेरी इच्छा है कल रथ यात्रा होने वाली है और आज मैं गुंडीचा मंदिर की सफाई करना चाहता हूँ। जगन्नाथपुरी में दो विशाल मंदिर हैं, एक जगन्नाथ का मंदिर जहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई दाऊजी महाराज बलदेव के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं, वो जो है द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा मंदिर है गुंडीचा मंदिर, जो कि वो स्थान है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समय 8 या 10 दिन के लिए निवास करते हैं। और रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने निवास स्थान से बाहर निकलते हैं और वो एक दिन होता है जब सब लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। और 3 विशाल रथों पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम जी और उनके बहन सुभद्रा को बड़े सुंदर प्रोसेशंस में कीर्तन के साथ भक्त गुंडीचा मंदिर ले जा रहे हैं। कृष्ण बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं। कृष्ण का हृदय हमेशा वृंदावन में रहता है, जब वो द्वारका में भी होते हैं हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं। रात के समय भी नींद में वो राधे 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 बोलते रहते हैं और जब उनको पता चलता है कि कल मैं जा रहा हूँ वृंदावन तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वो राधा रानी के भाव में हैं इसलिए वो कृष्ण के आने की तैयारी कर रहे हैं गुंडीचा में। वो इतने प्रसन्न हैं कि अपने भक्तों के साथ मिलकर उस मंदिर की सफाई करते हैं। और कैसे सफाई करते हैं वो मैं थोड़ा सा वर्णन अभी पढ़ूंगा श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद के अनुवाद के साथ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर के सेक्रेटरी मंदिर के सुपरिंटेंडेंट को बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई के द्वारा भगवान जगन्नाथ का स्वागत करना चाहता हूँ। आप सब भक्तों के लिए झाड़ू का इंतजाम करो और मटके ले आओ जिससे हम मटके में जल भर के उस मंदिर की अच्छी तरह से मार्जन कर सके। सब भक्त हाथ जोड़कर बोले भगवान आपको करने की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, मैं स्वयं अपने हाथों से भगवान के मंदिर को धोना चाहता हूँ। तो सब भक्त लोग मिलकर 100 झाड़ू लेकर आए और सब भक्त लोग झाड़ू लगाने लगे। महाप्रभु ने एक एक भक्त को एक एक झाड़ू हाथ में दिया और सब लोग गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करने लगे। उन्होंने भगवान का जो सिंहासन का इलाका है वो उस जगह को उठाया, उसको साफ किया, फिर सिंहासन वापस रखा, फिर उसके बाद जो दीवारें हैं साइड के उनको सफाई की, ऊपर के छत वो साफ करने लगे। सैकड़ों सैकड़ों भक्त सफाई कर रहे थे और साथ साथ गा रहे थे कृष्णा 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 कृष्णा, जोर से बोलिए कृष्णा कृष्णा। सर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए सब लोग कीर्तन करते हुए अपना कार्य कर रहे थे। महाप्रभु का शरीर पूरा झाड़ू लगाने के कारण पूरा शरीर धूल से भर गया, लेकिन साथ साथ क्योंकि वो एक्सटेसी में थे और झाड़ू लगाते हुए भी उनके आँखों में आंसू आ रहे थे, और क्योंकि उनके आँखों में आंसू आ रहे थे वो आंसू इतने सारे निकल रहे थे गंगा और यमुना की तरह कि वो सारी धूल सब साफ हो जाती थी। फिर महाप्रभु अंदर गए जहाँ पर भगवान के लिए डीटीज के लिए भोजन रखा जाता है, उस स्थान को साफ किया। फिर सब साफ करने के बाद सब एकत्र किया और एक वस्त्र में बांध के रखा। अब महाप्रभु सबको बोले आप सब भक्त जितनी जितनी सफाई कर रहे हो, जो जो धूल एकत्र कर रहे हो, जो जो तिनके निकाल रहे हो, सब एक कपड़े में बांध के रखो जिससे पता चले कि किसने ज़्यादा मेहनत की है। तो सब भक्त लोग एकत्र कर रहे थे, लेकिन सारे भक्तों का मिलकर भी जितना कलेक्शन था उससे ज़्यादा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का था। गौरंगा, क्योंकि वो भगवान हैं। भगवान जब झाड़ू लगा रहे थे ऐसा लग रहा था कि 100 हाथ हैं उनके पास। फिर सब जगह झाड़ू लगाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार सफाई करने लगे सूक्ष्म चीज़ों का, क्योंकि बड़े बड़े तिनके निकल गए लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये गुंडीचा मार्जन क्या है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं ये स्वयं के हृदय की सफाई है। जैसे महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि अगर आप भगवान जगन्नाथ को यहाँ पर बिठाना चाहते हो तो हृदय को साफ होना चाहिए। जैसे आप मंदिर में ऑल्टर है तब ऐसे जगह पे भगवान को नहीं रखोगे जहाँ पर धूल है गंदगी है, आप बिल्कुल साफ जगह पे रखोगे। ऐसे ही भगवान को अपने हृदय में बुलाने के लिए भी मेरे हृदय को साफ बनाना चाहिए कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर महाप्रभु बहुत खुश हुए देखकर कि भक्तों ने बहुत मेहनत की। जो भक्त ठीक से सफाई नहीं करता भगवान को डांटते, देखो इस तरह से नहीं, ये दूसरे भक्त की तरह इनकी तरह करो। और जो भक्त ठीक से सफाई करता उसको इनाम दिया जाता, जो भक्त ठीक से नहीं करता उसको फाइन भरना पड़ता। वो फाइन था केक मालपुआ, कहते जगन्नाथपुरी का मालपुआ, और उनको वही जो भक्त ठीक से सफाई करता उसको इनाम के रूप में वही दिया जाता। इस तरह महाप्रभु दिखाते कि परफेक्ट मैनेजमेंट कैसा है, कैसे लोगों को उत्साहित करना चाहिए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है अब हम पानी भरकर पानी को फेंकेंगे और अच्छी तरीके से उस फिर से सफाई करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु पानी को लेकर सिंहासन पर फेंकने लगे, फिर दीवारों पर फेंकने लगे, दीवारों से पानी उड़कर जमीन पर आने लगा, फिर छत पर फेंकने लगे, और सारे भक्त झाड़ू से उस पानी को आगे सफाई करने लगे। कोई कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों में लाकर पानी देता, कोई कोई छिपते छिपते हाथ में देते देते धीरे से उनके पैरों में गिरा देता, और कोई छिपके पानी पी लेता। इस तरह से लीला कर रहे थे। एक भक्त जो थे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उत्तरीय वस्त्र लेकर, जब पानी फेंका गया उत्तरीय वस्त्र लेकर उस मंदिर को अच्छी तरह से सफाई करने लगे, और वो मंदिर बिल्कुल साफ हो गया। निर्मल शीतल स्निग्ध कोरिलो मंदिर आपन हृदय जेन धरीले बाहिर। मंदिर ऐसे शुद्ध हो गया, इतना ठंडा हो गया और इतना सुंदर हो गया जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय था। गुंडीचा मंदिर से थोड़ी दूर इंद्रद्युम्न सरोवर है, और इंद्रद्युम्न सरोवर से भक्त मटके पानी के भर भर के ले आ रहे थे और एक दूसरे को दे रहे थे। नित्यानंद अद्वैत ब्रह्मानंद भारती परमानंद पुरी, ये सब एक्चुअली ये सीनियर भक्त थे, इनको छोड़कर जो जूनियर भक्त सब पानी लेकर आ रहे थे। और कई बार तो इतने भक्त पानी लेकर आ रहे थे कि जब भक्तों में टक्कर हो जाती मटके में तो मटका टूट जाता। घट घट देखी खट भांगी गेला शत शत लोक कह लाइल, जल भरे घर धोए करे हरी ध्वनि कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। जैसे किसी को अगर कोई मटका चाहिए तो बोलता है कृष्ण कृष्ण मुझे मटका दो, कृष्ण कृष्ण मटका दो, तो कुछ बोलते ही नहीं सिवाय कृष्ण कृष्ण। ये बहुत अच्छा है अगर हम भी ऐसा करें, कृष्ण कृष्ण कुछ बोलना हो तो कृष्ण कृष्ण, कोई है कृष्ण कृष्ण नहीं है हरी हरी। तो हर समय बोलना हरी हरी कृष्ण कृष्ण, जय जय कहे सही कहे कृष्ण नाम हईलो संकेत सब काम, सब काम संकेत से होता है। कृष्ण 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 हरी हरी, इस तरह से सब लोग कृष्ण कृष्ण बोलते कर रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए ये सब देखकर। लेकिन एक भक्त जो गौड़िया थे, गौड़ देश से थे, बहुत सुबुद्धि थे, बुद्धिमान थे, लेकिन स्वभाव से बहुत सरल थे, बहुत भोले भाले थे। बाकी लोग भगवान के चरणों को धोते थे, लेकिन कैसे, वो छिपके धोते। तो एक व्यक्ति थोड़ा पानी डालता, दूसरा छिपके लेता, तीसरे को बांटता, ऐसे आपस में एग्रीमेंट था उनके। लेकिन ये भक्त ने क्या किया, हे न काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल प्रभु र चरण युगे दिल घट जल, वो सीधे ले आया और ऐसे धो दिया, भगवान के चरणों को मंदिर में धो दिया, और सही जल लया आपन पान कैला, भगवान के सामने पीने लगा। ये देखी महाप्रभु मन दुख हैला, महाप्रभु अंदर से बहुत खुश हुए क्योंकि वैष्णव थे, भगवान को भगवान उनको अपना चरणामृत देना चाहते। भगवान उनको अपना चरणामृत देना चाहते थे, लेकिन भगवान दिखाना चाहते थे कि मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने कभी कोई व्यक्ति को अपने चरण नहीं धुलाने चाहिए। महाप्रभु गुस्से हुए, बाहर से स्वरूप दामोदर को बुलाकर बोले यही देखा तुम्हारा गौड़ीयर व्यवहार, आपके गौड़ीय वैष्णव का व्यवहार देखो। ईश्वरे मंदिरे मोरा पद धुआई ल, भगवान के मंदिर में मेरे पैर को धोया, सही जल आपन लय पान कैल, और वो जल खुद पी लिया। ये अपराधे मोर की है बे गति, मेरी क्या गति होगी, भगवान की क्या गति होगी भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान के नाम से ही सबका उद्धार हो जाता है। जब कोई न जानते हुए बोलता है कृष्ण कृष्ण सब लोग जाग रहे हैं ना, प्रॉब्लम है जब गर्मी होती है सब लोग जागते हैं, लेकिन जब थोड़ी मौसम अच्छा हो जाता है तो नींद ना लगती, सब लोग जोर से बोलिए कृष्ण कृष्ण, ठीक है अब इसके बाद आप जागते रहिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इसने मेरे पैरों को भगवान के मंदिर के सामने धोया, आप पता नहीं मेरी क्या गति होगी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बड़े गुस्से से उस गौड़ीय भक्त को पास में बुलाते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के उसको मंदिर से बाहर कर देते हैं सजा दे के। एक्चुअली उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से गलती, बहुत सरल था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आकर माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं इस भक्त को क्षमा कर दो। इस तरह से मंदिर की सफाई होती है। अगले दिन रथ यात्रा का समय आता है। रथ यात्रा में आप लोग गए हैं रथ यात्रा, बहुत से नहीं गए तो इस बार आप जरूर जाइए, 8 तारीख को रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में। ऑफकोर्स बहुत सारे सेंटर्स में रथ यात्रा है उसी दिन, लेकिन पुरी में रथ यात्रा वो स्थान में जहाँ पर से इंग्लिश में बोलते हैं बिगेस्ट टेम्पल, सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी का मंदिर है, सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी है, और सबसे पॉपुलर मंदिर जो है वो जगन्नाथ, जो सबसे एक फेस्टिवल में 10 लाख लोग, ऐसे कोई व्यक्ति है दुनिया में जिसको मिलने के लिए 10 लाख लोग आते हो एक ही दिन में, यू नो, और पूरा सड़क जो है लोगों से भरा हुआ होता है, कितनी तकलीफ भी होती है लेकिन लोगों को भगवान जगन्नाथ से इतना प्रेम है कि लोग हर साल रथ यात्रा के लिए आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ यात्रा में भाग लेते हैं। शुरुआत में सवेरे के समय पहंडी का उत्सव होता है, पहंडी के समय भगवान जगन्नाथ को जो दैत्यपति होते हैं वो बड़े प्रेम के साथ अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, फिर कभी कभी उनको तूली जो गद्दी होते हैं जो कुशन्स होते हैं बहुत सारे कुशन्स रखे जाते हैं, और भगवान जगन्नाथ इतने भारी होते हैं, जो जगन्नाथ है जगत के स्वामी हैं उनको कौन उठा सकता है, उनको कौन हिला सकता है, भगवान जगन्नाथ अपनी इच्छा से ही चलते हैं। आज से 2 साल पहले मैं गया था, मैंने एक पंडित से पूछा कि भगवान जगन्नाथ कभी बाहर आएंगे, क्या समय पहंडी कब होगी, तो वो मेरे को देख के गुस्से से बोला आप बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, क्या भगवान जगन्नाथ का कोई टाइम टेबल होता है, क्या कोई उनको बाहर ला सकता है, वो तो अपनी इच्छा से ही आते हैं। और वास्तव में रथ यात्रा में कभी कभी रथ रुक जाता है, भगवान जगन्नाथ रुक जाते हैं किसी भक्त के लिए, कभी भगवान जगन्नाथ शाम तक नहीं पहुंच पाते, अगले दिन जाते हैं उनकी इच्छा से, हालांकि डिस्टेंस खाली 3-4 किलोमीटर है, लेकिन भगवान जगन्नाथ कभी कभी बहुत फास्ट जाते हैं, कभी कभी धीरे जाते हैं, क्यों क्यों ऐसा होता है, अगर आप क्यों पूछेंगे तो भगवान पूछेंगे आप क्यों क्यों, ये ना आप क्यों पूछ सकते हैं, भगवान स्वराट है अपनी इच्छा से चलते हैं। तो जगन्नाथ के जो दैत्यपति होते हैं वो उनके लिए गद्दी का इंतजाम करते हैं, और भगवान जगन्नाथ को एक गद्दी से दूसरे गद्दी सिल्क के रस्सी से भगवान के दिव्य शरीर को उठा के दूसरे गद्दी पे ले जाते हैं धीरे धीरे, इसको पहंडी बोलते हैं। और जब भगवान को ले जा रहे थे इस तरह से तो उड़ीसा में एक बहुत सुंदर शब्द है मणिमा, मणिमा मणिमा यानी बहुत भद्र व्यक्ति के लिए बोला जाता है, तो भगवान को एक आसन से दूसरे आसन आगे ले जाते हैं, ऐसे करते करते भगवान को रथ तक ले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ इतने भारी होते हैं कभी कभी जिस गद्दी पे उनको रखते हैं वो गद्दी बिल्कुल उसके कपास हवा में उड़ने लग जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर भगवान को सिंहासन के ऊपर बिठाने के बाद स्वयं महाराज प्रताप रुद्र सोने के हैंडल वाला एक झाड़ू लेकर भगवान जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि चाहे हम राजा हों या हम फकीर हों हम भगवान जगन्नाथ के तुच्छ सेवक हैं। राजा प्रताप रुद्र ये वही थे जिन्होंने प्राचीन समय में राजा इंद्रद्युम्न के रूप में भगवान जगन्नाथ जी के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया था। राजा प्रताप रुद्र अनेक रूप से प्रयास कर रहे होते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं मैं नहीं मिल सकता, ये विषय ही है, संसारी व्यक्ति जो धन और संसारी चीज़ों में व्यस्त है, मैं इसका मुँह भी नहीं देखना चाहता। हा हंत हंत विषयंत भक्ष्यंत अपि साधु, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना जो है जहर पीने से भी ज्यादा बुरा है। लेकिन जब महाप्रभु देखते हैं कि वही राजा प्रताप रुद्र भगवान जगन्नाथ की खुशी के लिए हाथ में झाड़ू लेकर सबके सामने सरल वस्त्र धारण करके झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान निश्चय करते हैं कि मैं इन पर कृपा करूँगा। भगवान की कृपा मिलती है कैसे? सेवा भावना से। जब हम तैयार हो जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, चाहे वो सेवा बहुत बड़ी या छोटी हो, वास्तव में छोटी और बड़ी कोई सेवा नहीं होती क्योंकि सब भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन जो भी सेवा अगर व्यक्ति नम्र भावना से करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। इस तरह से राजा प्रताप रुद्र की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान का रथ इतना सुंदर सजा होता है, सारे लोग आश्चर्यचकित होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ ऐसा लग रहा होता है मानो सुमेरु पर्वत हो, जो कि सोने का पर्वत है। भगवान जगन्नाथ अपने रथ पे विहार करने लगते हैं। जब रथ चलने लगता है भगवान जगन्नाथ दाएं और बाएं देख रहे होते हैं। आसपास का सारा इलाका रेती से भरा हुआ होता है। उस जमाने में सड़क नहीं थी, दुकानें नहीं थे, और भगवान जगन्नाथ सब बगीचे को देख रहे होते हैं। उनको बहुत खुशी हो रही होती है कि मैं वापस वृंदावन जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को विभाजित करते हैं 7 पार्टीज़ में, 7 ग्रुप्स में। 4 ग्रुप आगे होते हैं कीर्तन के, 1 ग्रुप भगवान जगन्नाथ के दाईं तरफ, 1 ग्रुप भगवान जगन्नाथ के बाईं तरफ और 1 ग्रुप भगवान जगन्नाथ के पीछे। इस तरह 7 पार्टीज़ होते हैं। हर एक पार्टी में एक मुख्य कीर्तन गाने वाले और हर एक में एक मुख्य नृत्य करने वाले और हर एक पार्टी में 2-2 मृदंग। इस तरह 14 मृदंग और उसके अलावा कई करताल और हजारों लोग। इतनी जोर की आवाज़ होती है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे। 7 संप्रदाय बाजे 14 मृदंग, जार ध्वनि सुनी वैष्णव है ल पागल। इतनी जोर जोर की ध्वनि होने लगती है कि सारे वैष्णव पागल हो जाते हैं। सारे वैष्णव बादल के समूह की तरह एक साथ चल रहे होते हैं, और जब भक्तों ने नाम कीर्तन किया तो उनके आंखों से आंसू आने लगे। त्रिभुवन में स्वर्ग ब्रह्मलोक तक और नीचे पाताल तक और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी सिवाय कीर्तन के, इंस्ट्रूमेंट्स के, मृदंग के और साथ साथ भगवान के नाम के, हरी हरी। 7 ठाई बोले प्रभु हरी हरी बोली, जय जगन्नाथ बोले हस्तयुग तुली। श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से ताली बजा रहे थे और बोल रहे थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरी हरी। हर एक पार्टी में हर एक ग्रुप को लग रहा था कि महाप्रभु सिर्फ हमारे ग्रुप में है। ये भगवान का ऐश्वर्य था। जिस तरह रासलीला के समय हर एक गोपी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे ही साथ हैं, या द्वारका में हर एक रानी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे ही महल में है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, वो सारे भक्तों को इच्छा को प्रसन्न कर रहे थे और सबको लग रहा था भगवान मेरे ही ग्रुप में है और किसी के ग्रुप में नहीं है। थोड़े समय बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को सुंदर प्रार्थना अर्पण करने लगे। वो गाने लगे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह भगवान का गुणगान कर रहे थे। फिर वो मुकुंदमाला स्तोत्र से श्लोक गाने लगे, जयति जयति देवी देवकी नंदनो जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीपयो जयति जयति मेघ श्यामल कोमल अंगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदो। यानी भगवान के नाम है कि देवकी नंदन, मुकुंद, पृथ्वी के भार को दूर करने वाले, जयति जनानी वासो सब। इस तरह से गाते गाते फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला, और ये श्लोक हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए हमारे प्राण के समान है। ये श्लोक बताता है कि कैसे हर एक गौड़ीय वैष्णव की क्या अभिलाषा है जीवन में। और वो श्लोक है, नाहम विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र हो न वर्णी च ग्रहपति न वनस्थो यतीरवाह किंतु प्रोद्य नखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दासान उदास, गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दासान। महाप्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, हालांकि महाप्रभु ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, द्विजमणि। वो बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, हालांकि वो सन्यासी थे। वो ये दिखा रहे हैं कि आत्मा की पहचान वर्ण और आश्रम से नहीं होती। बोले मैं कौन हूं? गोपीर भर्तु, गोपियों के स्वामी गोपीनाथ कृष्ण, उनके दासों के दासों का दास। आई एम जस्ट द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, इज अवर ओनली पोजिशन। हमारी एक ही स्थिति है, हम सर्वेंट हैं, दास। लेकिन हम स्वामी बनना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम दास बनना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं, हमेशा दास बनने का प्रयास करना चाहिए। मटीरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दासानुदास। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप भगवान अपने आप को भगवान का दास मानते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है अगर आप मानो कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, और उससे अच्छा है कि दासों के दासों का दास, उससे अच्छा है अगर दासों के दासों के दासों का दास, उससे अच्छा है अगर दासों के दासों के दासों के दास, रात के 9 बजे तक दासों के दासों के दास, अनलिमिटेड। द मोर यू गो डाउन, हर एक जीव को सोचो वो मेरे से श्रेष्ठ है, चाहे आपसे बड़े हो छोटे हो, सन्यासी हो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो पुरुष हो स्त्री हो, सबको अपना प्रभु मानो, अपने आप को दास मानो, तब आपके मुख से हमेशा निकलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं सुपीरियर हूँ, बॉसानु बॉस, मैं इससे भी अच्छा हूँ, तो आपको 16 माला करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको क्यों जप करने में तकलीफ होती है? क्यों? क्योंकि आपको रुचि नहीं है, आपको टेस्ट नहीं है। क्यों टेस्ट नहीं है? क्योंकि आप दासानुदास नहीं बने हैं। आप दासों के दासों के दासों के दास बन जाओ तो आपको रुचि तुरंत मिल जाएगी। हमको अहंकार है, अहंकार है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, ये बड़े भक्त हैं, इनको मैं प्रणाम करूँगा, लेकिन ये तो अभी पहली बार आए हैं कार्यक्रम में, इसको कैसे प्रणाम करूँ? इसके तो बुरी आदतें हैं, इसको कैसे प्रणाम करूँ? चाहे किसी की अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, सबके हृदय में भगवान है। अगर ये आप जान लो तो आप शुद्ध हो जाओगे, बहुत जल्दी आपको प्रगति हो सकती है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी जोर से ऊपर जंप लगाते, कीर्तन में नीचे गिरते, ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत जो है जमीन पर लौट रहा है। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू आने लगते, कभी कभी उनका शरीर कांपने लगता, कभी कभी जजग जगन्नाथ बोली जजग बोलते हुए उनके दांत कटकटा रहे होते हैं, मानो सर्दी में जैसे किसी के दांत कटकटा रहे हों। कभी कभी वो कीर्तन से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाते, और नित्यानंद अद्वैत उनके पीछे पीछे हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोलते हुए पीछे जाने लगते। श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए 3 सर्कल बनाए हुए थे उनके आसपास उनकी रक्षा के लिए। पहले सर्कल में थे स्वयं नित्यानंद प्रभु बलराम जी, जिनके एक हाथ इनफ है सब के लिए, बलराम जी। दूसरे सर्कल था काशीश्वर और गोविंद, महाप्रभु के निजी सेवक। और तीसरा सर्कल में थे राजा प्रताप रुद्र और उनके सर्वेंट्स। तो इधर महाप्रभु बीच में डांस कर रहे, पहला सर्कल नित्यानंद प्रभु, दूसरा सर्कल गोविंद, तीसरा सर्कल राजा प्रताप रुद्र। और हर एक की इच्छा हो रही है भगवान को देखने की, स्वाभाविक है। सबका मन भगवान के रूप के ऊपर केंद्रित है। और उस समय राजा जब भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो बीच में श्रीवास खड़े हैं, श्रीवास जो नारद मुनि के अवतार हैं, श्रीवासांगन। तो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए राजा प्रताप रुद्र की दिव्य इच्छा थी, इसलिए उन्होंने हरिचंदन उनके सेक्रेटरी ने श्रीवास को हाथ किया। अब एक तरफ हो जाओ, राजा देखना चाहते हैं, VIP सबसे बड़े VIP राजा हैं, वो देखना चाहते हैं, लेकिन श्रीवास इतने मग्न थे देखने में, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनको बार बार इशारा किया, 2-3 बार इशारा किया, अंत में उनको गुस्सा आ गया, वो पीछे मुड़े, चापड़ मारी या निवारण कैला। सबके सामने, राजा के सामने उनके सेक्रेटरी को थप्पड़ मार दिया, चापड़ खाइया क्रुद्ध हिला हरिचंदन। हरिचंदन गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा के तुम जो प्राइम मिनिस्टर के PA है या सेक्रेटरी है उसका भी बहुत आदर होता है, उसको सबके सामने थप्पड़ मार दिया। वो फिर से बदला लेने के लिए गए, लेकिन राजा प्रताप रुद्र ने उनको रोक दिया। राजा बोले, भाग्यवान तुम्ही इहार हस्तस्पर्श पाइल, आपका इतना भाग्य है, तुम्हारा भाग्य हस्तस्पर्श पाइल थप्पड़ पाइल इतना भाग्य है, हमारा भाग्य नहीं, तुम ही कृतार्थ हो लो, मेरे को कभी थप्पड़ नहीं मिला। भगवान के शुद्ध भक्त का थप्पड़ मिलना वो स्पेशल है। इसलिए प्रभुपाद को भी जब जो डिवोटीज उनके बहुत पास में थे उनको कई बार डांट मिलती थी, जो थोड़े पास में थे बहुत प्रशंसा मिलती, लेकिन ज़्यादा पास में थे डांट भी मिलती थी। एक बार शुद्ध कीर्ति प्रभु बता रहे थे मायापुर में कि प्रभुपाद कई बार भक्तों से मजाक भी करते, और एक बार प्रभुपाद शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोले कि मेरे गुरु भाई जब आएंगे मिलने के लिए वो आते हैं और मेरा टाइम बेकार करते हैं, अब कृष्ण की बात नहीं करते, इसलिए उनको बोलना कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, या कुछ बोल देना कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसे बोल देना। शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले ठीक है, और उनके वो जो जिसके बारे में बोला था वही थोड़ी देर बाद आ गए। अब प्रभुपाद वास्तव में रेस्ट कर रहे थे, सोए हुए थे, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद रेस्ट कर रहे हैं, तो आप बाद में मिलना। नहीं, मैं मिलने के लिए आया हूँ, मेरे को स्वामी जी ने बोला मैं कभी भी आ सकता हूँ, आप कौन होते हो रोकने वाले? बोले नहीं, प्रभुपाद रेस्ट कर रहे हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। नहीं, आप नहीं मिल सकते, रोक दे जबरदस्ती। उतने में थोड़ी देर बाद प्रभुपाद स्वयं उठ गए और आए और बोले ओ आप कभी आए, बहुत भाग्य है, मिलने लगे। और फिर वो भी बहुत खुश हो गए, फिर गुरु भाई बोलने लगे प्रभुपाद को, शिकायत करने लगे, ये आपके सर्वेंट श्रुत कीर्ति ये मेरे को आपको मिलने से रोक रहे थे। प्रभुपाद बोले श्रुत कीर्ति को देख के, मैंने तुम्हें बताया ना कि जब ये गुरु भाई हैं तो उनको रोकना मत, कभी मेरे को तुरंत बुला लेना। तो श्रुता कीर्ति और बोले, मैंने बोला हाँ हाँ प्रभुपाद, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। मतलब उनको लगा कि प्रभुपाद मेरे से कितना प्रेम करते हैं कि मैंने सही चीज़ की फिर भी वो मेरे को डांट रहे हैं। मतलब वो प्रेम का लक्षण है, जिसको प्रेम होता है उसको डांट मिलती है, जो बाहर का व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं वो बहुत अच्छे है, लेकिन प्रभुपाद जिसे बहुत इंटीमेट होते उसको ही डांटते। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बोल रहे हैं भाग्यवान तुम्हें यार थप्पड़ पाइला, तुमको थप्पड़ मिला है, बहुत भाग्य की बात है, हमारा भाग्य नहीं, मेरा भाग्य नहीं। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य कर रहे थे, और कभी कभी महाप्रभु के मुंह से झाग निकलता था, एक्सेसिव कारण फेन फोम, और ऐसा लग रहा था कि अमृत की धारा निकल रही है, इतना सुंदर। और शुभानंद जो बहुत एक्सपर्ट थे रसों का आस्वादन करने के लिए, वो दौड़ते हुए गए और उन्हें वो महाप्रसाद ले लिया। महाप्रभु गाने लगे कि हे कृष्णा, आप राधा रानी के भाव में हैं, आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी हूँ, लेकिन अब यहाँ पर आप कुरुक्षेत्र में हो, जहाँ पर आपको आप रथ के ऊपर सवार हो, आप हाथी के ऊपर सवार हो, आपने सोने के आभूषण धारण किए हैं, सोने का मुकुट है और बाजूबंद हैं, मैं आपको इस रूप में नहीं देखना चाहती, मैं आपको वृंदावन विहारी वनमाली गोपाल के रूप में देखना चाहती हूँ। हे कृष्ण चलो वृंदावन चलो यमुना के किनारे। ये एक्चुअली रथ यात्रा का मेडिटेशन है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए द्वारिका में, तो कई वर्षों के बाद भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिले और गोपियां बहुत खुश हुए, उनके प्राणनाथ कृष्ण करीब 100 साल बाद उनको मिल रहे थे। लेकिन गोपियां मन ही मन सोच रहे थे कि कृष्ण तो वही हैं, लेकिन ये कृष्ण का जो लिबास है, कृष्ण का जो ड्रेस है, ये हमें पसंद नहीं है, हम कृष्ण को वृंदावन विहारी कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, पीताम्बर धारण किया, गले में फूलों की वनमाला और हाथ में मुरली और गोपियों के मन को आकर्षित कर रहे हैं, वो रूप देखना चाहते हैं। तो रथ यात्रा का मतलब है श्रीमती राधा रानी और गोपियां कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वापस वृंदावन लेकर जा रहे हैं, या द्वारका से वापस वृंदावन लेकर जा रहे हैं। तो कभी कभी रथ चलते चलते क्या होता कि भगवान जगन्नाथ का रथ आगे चला जाता और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में पीछे रहते देखने के लिए कि भगवान जगन्नाथ मेरा इंतज़ार करते हैं कि नहीं, तो भगवान जगन्नाथ का रथ रुक जाता। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु आगे चले जाते और जगन्नाथ खड़े जाते पीछे, तो इस तरह से इहो लागी होड़ा होड़ी दोनों में कंपटीशन होता और हमेशा श्रीमती राधा रानी विजयी होते, अर्थात गौरंग महाप्रभु विजयी होते। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर श्लोक गाने लगे जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट करते हैं। और कभी कभी रथ रुक जाता श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए, भगवान जगन्नाथ रुक जाते और अपलक नेत्रों से गौरंग महाप्रभु की सुंदरता को निहारने लगते। एक बार महाप्रभु एक्सेसी में नृत्य करते करते अचानक राजा प्रताप रुद्र की गोद में गिर पड़े हालांकि तीन सर्कल थे, पहला नित्यानंद प्रभु का, फिर गोविंद का, लेकिन भगवान सबको छोड़ के राजा की गोद में गिरे जानबूझ के, लेकिन ऐसा दिखाया कि मुझे मालूम नहीं है। और जैसे ही वो होश में आए तब चैतन्य महाप्रभु उठे और देखिए कौन है, ओ राजा, छी छी छी, विषय रस स्पर्श हैला अमार, मैं संसारी व्यक्ति को स्पर्श कर लिया। ए भगवान, कोई भी चीज़ भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती। भगवान प्रताप रुद्र को कृपा दिखाना चाहते थे, लेकिन फिर भी भारी से दिखाना चाहते थे कि सन्यासी को कितना स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के क्रोध को देखकर राजा प्रताप रुद्र डर गए, मैंने अपराध कर लिया। लेकिन सारे भक्त बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ऊपर प्रभु प्रसन्न हई ल, तुमा लक्ष्य करी सिखाया निज गण, भगवान आप पे बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन आपके द्वारा बाकियों को सिखा रहे हैं कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे एक जगह पर जहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है, बालागंडी बोलते हैं। और अभी आज के प्रवचन का आखिरी भाग है, बड़े ध्यान से सुनिए, ये सुनने से आपको जरूर भगवान जगन्नाथ की पूरी कृपा मिलेगी और जागते हुए सुनो तो डबल कृपा मिलेगी। जय जगन्नाथ स्वामी की, श्री गौरंग महाप्रभु की। सब लोग जोर से बोलिए गौरंग। गौरंग का नाम इतना पावरफुल है, अगर एक बार कोई गौरंग का नाम सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है। आपका जीवन तो सफल हो ही गया, लेकिन इतना जोर से बोलिए कि कम से कम पूना स्टेशन तक आवाज जानी चाहिए। गौरंगा गौरंगा, पता नहीं, चेक करना चाहिए। ये लास्ट लीला, बड़े ध्यान से सुनिए। बालागंडी में क्या होता है, भगवान जगन्नाथ थोड़ी देर विश्राम करते हैं, क्योंकि इतनी देर रथ पे चले थक गए थोड़ा, तो विश्राम करते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। और बालागंडी में कोई भी व्यक्ति भगवान को भोग अर्पण कर सकता है, चाहे वो दीक्षा लिया हो नहीं हो, पंडा हो या कोई हो, सब चीज़ें भोग लगाए जाते हैं। तो सब चीज़ें लेकर भगवान को जब भोग लगाया जा रहा होता है, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी विश्राम कर रहे होते हैं। हर भक्त अलग अलग पेड़ों के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे और जो राजा के पुरोहित जैसे थे, गुरु जैसे थे, वो राजा को बोले, अब जाओ, अब अच्छा समय है, अब अच्छा समय है, जाओ चैतन्य महाप्रभु के पैर मसाज करो और उनको रासलीला के गीत सुनाओ। राजा प्रताप रुद्र ने अपने राज वेश को त्याग दिया, बिल्कुल सरल सादे वस्त्र पहने और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे कृष्ण प्रेम में और राजा प्रताप रुद्र उनके पैरों को दबाने लगे। और वो रासलीला में जो पांच श्लोक हैं, पांच अध्याय हैं, उसमें से कुछ श्लोक गाने लगे और उसमें से एक श्लोक बहुत फेमस है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंती ये भूरिदा जना। इसका अर्थ है कि हे कृष्ण, आपकी कथा अमृत के समान है। अमृत क्यों बोला है, क्योंकि संसार में सब लोग मरे हुए के समान है, जो कृष्ण कथा सुनता है वो जाग जाता है आध्यात्मिक रूप से। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो भी इस दुनिया में जो जीव तप्त है संसार अग्नि से, उनकी तप्त जीवन को शांत करने वाला। कभी भी रीडितम कलमशाप हम, ये सारे कलमशों को दूर करने वाला है। महापुरुष भी इसका गुणगान करते हैं। श्रवण मंगलम, ये सुनने में मंगल है। श्रीमद आततम, ऐश्वर्य देने वाला है। और भूवि गृणंती ये भूरिदा जना, जो ये कथा दूसरों को सुनाता है वो व्यक्ति भूरिदा है। भूरिदा अर्थात बहुत महान व्यक्ति है। और जब चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक सुनते हैं वो इतने प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं और बोलो और बोलो, और अचानक बोलते हैं भूरिदा भूरिदा भूरिदा, बोलते हुए राजा को आलिंगन कर देते हैं। वही राजा जिसे वो पहले मिलना नहीं चाहते थे उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं, तुम्ही मोरे दिल बहु अमूल्य रत्न, मोर किचू दीते नाही दिलवालिंगन, आपने मुझे इतने बहुमूल्य रत्न दिए हैं, ये कृष्ण की कथा दी है, मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता आपको, सिर्फ मैं गले मिल सकता हूँ। और बार बार गले मिलकर बोलने के भूरीदा भूरीदा। और कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यही देख चैतन्य र कृपा महाबल, तारा अनुसंधान बिना कराय सफल। ये भगवान की कृपा का फल देखो कि भगवान राजा प्रताप रुद्र से पहले नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन अब बड़े खुशी से मिल रहे हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि राजा प्रताप रुद्र ने सबके सामने झाड़ू लगाने के लिए तैयार थे और वैष्णव की सेवा के लिए तैयार थे। महाप्रभु अंत में पूछे कि तुम्ही आप हो कौन हो, अचानक आपने आकर मुझे कृष्ण लीलामृत का पान कराया, आप है कौन है? और ये वाला श्लोक आप सब मेरे पीछे दोहराइए, ये वो श्लोक है जो अगर आप समझ जाएं तो आप इसी जन्म में भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर इस श्लोक को आप समझ कर उसके अनुसार जीवन बिताएं तो आप बोलिए। राजा से पूछा गया आप कौन है, तो राजा ने जवाब दिया, मैं राजा प्रताप रुद्र हूँ, पूरी रथ यात्रा मैंने स्पॉन्सर की है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे इशारे पे सब नहीं। वो बोले, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कर ए मोर आश। राजा कहे, राजा बोले, आमी तोमार दासानुदास, मैं आपके दासों का दास, भृत्येर भृत्य कर ए मोर आश, मेरी एक ही इच्छा है और वो क्या है कि आप मुझे अपने दासों का दास बना लो। प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है दासों का दास बनना। जब प्रहलाद महाराज से पूछा गया कि आप मांगो क्या वरदान चाहिए, अब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई तुम मांगो, प्रहलाद महाराज बोले, मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने मुझे कुएं से बाहर निकाला, वो कुएं जो अंधा कुआं जिसमें सांप भरे हुए थे, मैं उनकी सेवा चाहता हूँ, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। कुबेर ने ध्रुव महाराज से मांगा, ध्रुव महाराज को कहा मांगने के लिए, ध्रुव महाराज बोले मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। श्रीधर खोला बेचा जो निर्धन थे, भगवान बोले श्रीधर मैं तुमको राजा बना देता हूँ, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। श्रीधर बोले नहीं मैं आपके दासों का दास। आपसे भी समझो आज रात भगवान बोलते हैं प्रकट होकर आपको क्या चाहिए, तब यही मांगिए कि मैं आपके दासों का दास बनूं और हर क्षण गा सकूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए प्रार्थना सुन के बोले कि ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करता हूँ, सारे मैं तुम्हें ऐश्वर्य भी दिखा रहा हूँ, कोई ऐश्वर्य दिखाए, लेकिन बोला कोणाला सांगू ने आप किसी को बताना मत, और ऐसा क्या करिए लीला का अंत। फिर सब भक्त लोग प्रसाद लेने लगे, मैं प्रसाद का वर्णन करके अंत करूँगा क्योंकि ये बहुत सारे आइटम्स हैं कि आजकल यहाँ आश्रम में या पुना मंदिर में प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी होता है, नहीं तो बाकी आइटम्स वर्णन से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बताया गया जब भगवान जगन्नाथ को भोग लगा, दही फल का रस नारियल आम सूखी घरी कटहल केले नारंगी अंगूर बादाम छोरा किशमिश, आप संतुष्ट हुए कि नहीं? मनोहर लड्डू मिठाइयाँ अमृत गुटिका और कंडेंस्ड मिल्क को क्या बोलते हैं, रबड़ी या बासुंदी या लक्ष्मी नारायण प्रभु को प्रिय बासुंदी फिर पपीते और स्क्वैश और क्रीम और मिठाई और कपूर और अनार और काली मिर्च के लड्डू और खाजा जगन्नाथपुरी के खाजा और तिल और बहुत सारी चीज़ें, दही दूध मक्खन छाछ श्रीखंड और कई प्रकार के अचार, नींबू के अचार बेर के अचार, ऐसे वर्णन करने के बाद बोलते हैं इतने सारे चीज़ें कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। और ये सब खाने के बाद अब रथ चलाने लगे, लेकिन जब रथ चलाने का समय आया, सॉरी एक बात मैं भूल गया, सबको खिलाने के बाद महाप्रभु बोले अब कंगालों को खिलाओ, गरीबों को भी खिलाओ, ब्राह्मणों के बाद गरीबों को खिलाओ। और सब लोग खाने लगे और खाते खाते सब बोलने लगे हरी हरी,
हरी, हरी।
इतनी जोर से हरी की ध्वनि हो रही थी, लेकिन जब रथ चलने का समय आया तो भगवान जगन्नाथ ने इतना प्रसाद लिया था कि रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तब महामल्लगण राजा प्रताप रुद्र चिंतित हुए, उन्होंने कुछ पहलवान को बुलाया, शायद कोल्हापुर के स्ट्रॉन्ग कोल्हापुर के पहलवान को बुलाया, लेकिन बहुत शक्ति से रथ रस्सी खींच रहे थे, रथ नहीं चल रहा था। अंत में हाथियों को बुलाया और हाथी भी बहुत प्रयास कर रहे थे, हाथी के जो अंकुश से उसको, उसके महावत पीट रहे थे, हाथी चिंगार रहे थे, लेकिन रथ नहीं चल रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, सब हाथियों को छोड़ दिया, सब पहलवान वापस चले गए कोलाब। अभी महाप्रभु स्वयं गए। तबे महाप्रभु सबे हस्ती घुचाइला, निज गण रथ का छीटानी बारे दिला। अपने भक्तों के हाथ में रस्सी दी और अपने रथे पाछे ठेले माथा दिया, से माथे से टच किया पीछे से, हड़ हड़ करी रथ चली लागीला। अब भगवान जगन्नाथ का रथ चलने लगा। गौरंग जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। और भगवान जगन्नाथ इतने तेजी से चल रहे थे कि रथ भक्त खींच भी नहीं रहे थे, उनको रथ रस्सी पकड़ने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि रस्सी आगे बढ़ती जा रही थी, रथ आगे बढ़ता था। आनंद करे लोक बोले जय जय, जय जगन्नाथ बिना आर नाही सुनी, एक ही आवाज आ रही थी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन। और फिर दूसरी आवाज आ रही थी, जय गौरचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य। इस तरह गौरचंद्र और श्री कृष्ण चैतन्य का गुणगान हो रहा था। और फिर चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर महाराज प्रताप रुद्र बहुत प्रसन्न हुए। तो मैंने शॉर्ट में बताया, और मेरे बोलने में बहुत सारे गलतियां भी है, मैं अशुद्ध भी हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है आप सब जो बुद्धिमान भक्त हैं, श्री चैतन्य चरितामृत का अनुवाद प्रभुपाद ने इंग्लिश में भी किया है और उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आज आप ही लेके जाइए, आज के दिन ले जाइए और पढ़िए लीलाओं को, स्पेशली जगन्नाथ लीला को, और हो सके तो जगन्नाथपुरी में भी इस उत्सव में भाग लीजिए। भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में कहा जाता है कि कोई भी एक बार भी अगर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचता है तो मृत्यु के समय जब सारे विचार घूम रहे होते हैं दिमाग में, उसको वो विचार आता है जगन्नाथ के उसकी विजिट का, और वो विचार पे आके वो वहीं पर रुक जाता है विचार, और भगवान जगन्नाथ को स्मरण करके फिर भगवान के धाम जा सकता है। जय जगन्नाथ स्वामी की, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, शिल प्रभुपाद की। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये लीला सुनना तो अच्छा होता है और उसमें आनंद भी मिलता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सच्चे दिल से भगवान का नाम जप करना, सच्चे दिल से। एक बार भी आप एक माला भी सच्चे दिल से करो तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रभुपाद से कैलिफोर्निया में एक डिवोटी ने पूछा, प्रभुपाद भगवान को प्राप्ति करने में कितना समय लगता है? प्रभुपाद जी बोले, एक क्षण, एक क्षण। अगर आप एक क्षण एक बार भगवान को पुकारो तो प्राप्ति। फिर बोले, लेकिन एक क्षण सच्चे दिल से पुकारने के लिए भी कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है। तो जब करते समय भगवान से प्रार्थना करो, कृष्ण मेरे को दया करो। कबे हबे बोलो से दिन अमार, हे कृष्ण वो दिन कब आएगा? अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि, कब मेरे को शुद्ध नामे रुचि मिलेगी? कब मैं वैष्णव का दास बनूंगा? कब मैं सब में अच्छे गुण देखूंगा? कब मैं पेड़ के समान सहनशील बनूंगा? पेड़ को आप काटो भी तो भी पेड़ कुछ नहीं बोलता, पेड़ सूख भी जाए तो पानी मांगता नहीं है, नहीं पेड़ कभी मांगता नहीं है, मुझे पानी दो, पानी दे दिया ठीक है, नहीं दिया मेरे को काटने है ठीक है काटो ले जाओ आप घर के लिए यूज़ करो फर्नीचर। ऐसे गुण कब आएंगे मेरे अंदर? रो रो के प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, तभी एक दिन होगा जब हम त्रिनादपि सुनिचन बन जाएंगे, फिर हमारे मुख से हमेशा हरि नाम निकलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इतनी देर तक थोड़ा लंबा प्रवचन हो गया क्षमा चाहता हूँ, नहीं मेरी प्रार्थना है कि आप इस लीला को हमेशा याद रखिए और भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करें कि हम हर समय उनके चरणों को याद कर सकें। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण